ॐ शांति ॐ शांति। आज हम देख रहे हैं कि बच्ची के बहुत सी माताएं और भाई बाबा के घर में बैठे हैं और आप सबको मालूम हो साकार बाबा के टाइम पर जब पार्टीज आती थी तो साकार बाबा हमेशा पार्टीज की ड्यूटी रहती थी। कोई सुबह नाश्ता बनाएगा, कोई दोपहर का खाना बनाएगा, कोई रात का खाना बनाएगा और कोई रात का खाना सर्व करेगा, कोई सुबह का नाश्ता सर्व करेगा। अभी तो भट्टी वाले आते हैं, बाबा बहुत प्यार से उनकी खातरी भी करते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ न कुछ सेवा के लिए जरूरत रहती है। तो आज जो है तो तोशा की टोली बनाई जाएगी, इसलिए जो भी सेवाधारी माताएं यहाँ बैठी हाथ खड़ा करें। हाँ, सेवाधारी माताएं नीचे जाएं और बट्टी की भी 30 के करीब माताएं अगर जाएंगी तो तोशा बना करके 8 बजे तक वापस आ जाना। वहां पर मुरली भी सुनेंगे, जो माताएं जा सकती हाथ खड़ा करें, क्योंकि बहुतों के लिए टोली भी बनती है ना। जो बट्टी की माताएं जा सकती हाथ खड़ा करें, 5, 1, 2 बस। बाबा के टाइम पर तो सारा ही ग्रुप सेवा करता था, फिर से हाथ उठाओ और हाथ उठाओ, देखेंगे बाबा आपको बहुत को और हाथ उठाओ, बस और हाथ। जब तक 30 हाथ नहीं उठेंगे तब तक आप फिर से हाथ उठाएंगे, है ना, उठाओ और हाथ उठाओ। हाँ, अभी ये 30 माताएं जो है ना, अभी जाए पहला जो टोली किचन है वहां जाकर के तोशा बनाने में, तोशा बनाने बहुत सहज ऐसे ऐसे हाथ करना, कुछ नहीं करना है, तो उस एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो अभी उठे सेवाधारी माताएं उठे और बट्टी की भी उठी, लेकिन बट्टी वाली माताओं को क्या करना है, 8 बजे पूरा आ जाना है यहाँ पर हॉल में आ जाना है, क्योंकि आज बट्टी वालों की सौगात भी है। ठीक है, चलो ताली बजाओ इनके लिए, कितनी प्यार से सेवाधारी माताएं भी सेवा करती हैं और ये सब सेवा करते हैं। बाबा भी बहुत बहुत आपको बधाई, तो क्या बाबा और भी शक्ति देगा। अच्छा, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को एक बात का ध्यान खिंचवाया है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम जाकर के प्रिंस और प्रिंसेस बनेंगे। लौकिक में भी देखते हैं कि कोई अगर एग्जाम में पास हो जाता है तो बहुत खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी बहुत खुशी होनी चाहिए। दूसरी बात बाबा ने कही कि तुम बच्चों को ये भी नशा रहना चाहिए कि हम बेगर टू प्रिंस बनने वाले। और तीसरी बात बाबा ने कही कि बाबा क्या चाहते हैं, मेरे सब बच्चे गोल्डन स्पून इन माउथ होना चाहिए। गोल्डन स्पून इन माउथ भी 2 प्रकार से मिलता है। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में या अज्ञान काल में कोई बहुत धन दान करता है, बहुत कुछ करता है, तो उसको गोल्डन स्पून मिल जाता है थोड़े समय के लिए, लेकिन तुम बच्चों को गोल्डन स्पून मिलता है बाबा की पढ़ाई से, जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उतना जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे और लक्ष्मी रानी की राजधानी में नजदीक में आएंगे। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने खास पढ़ाई पर भी ध्यान खिंचवाया है। अच्छा, आज की तारीख है 6 जून 2025। मूवी का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। मीठे बच्चे भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। आज का प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त होता है, कैसे? गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त होता है, कैसे? इसका उत्तर है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से। जब दान पुण्य करते, कोई अच्छे घर में जन्म लेते हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं, इसलिए पूर्व जन्म में जो कोई बहुत दान पुण्य किया, इतने हाईएस्ट फैमिली में जन्म लिया, तो बाबा कहते हैं एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। हमको कौन सा लेना है? ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या सरकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजा में मिल अंतर। यहाँ पर भक्ति में करे, कितना दान पुण्य करेंगे, रॉयल घर में अच्छे घर में जन्म लेंगे, लेकिन भक्ति में दान पुण्य आदि करने से राजाई नहीं मिलती है। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते, सारे विश्व में ज्ञान देते, लेकिन सुनते कौन है? जो बाबा के बच्चे। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये बाप ने खास फरमान किया है तो मानना चाहिए ना। कौन सा फरमान है? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो बाबा कहते बाबा ने ये जो फरमान किया है तो क्या करना चाहिए? बाबा कहते मानना चाहिए ना। तो बाप ने ये जो खास फरमान किया है तो मानना चाहिए ना। ऊंच से ऊंच बाप की श्रीमत भी मशहूर है। यदि तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं, वही श्री श्री बनाते हैं, श्री माने श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्होंने बाप, इन्हों को किसने बनाया? बाप ने ही बनाया। श्री श्री बनाने वाला कौन है? बाबा है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्होंने, इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत है। सच्चों के नई दुनिया के कितने नाम है, पैराडाइज है, वैकुंठ है, स्वर्ग है, बहुत नाम है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया के नाम तो बहुत है, महिमा के लिए नाम बहुत रखिए, और महिमा है तब तो रखिए ना। महिमा के लिए नाम बहुत है। कहते भी है ना, स्वर्ग और नरक। फलानी स्वर्गवासी गया तो गया नरकवासी है, परंतु मनुष्य में इतनी समझ नहीं कि स्वर्ग नरक नई दुनिया और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, कुछ भी जान के ले। तुमको कौन तो कहेंगे स्वर्ग जो सुख है, जिसको बहुत धन संपत्ति है, तो क्या कहेंगे इनके घर तो स्वर्ग लगा पड़ा, लेकिन जहाँ बहुत धन संपत्ति है वहां पर सबसे ज्यादा दुख है, स्वर्ग नहीं और ज्यादा दुख है। कहने में कहेंगे स्वर्ग है लेकिन है तो दुख। तो बाबा जी की इतनी भी बुद्धि नहीं है कि स्वर्ग क्या नरक क्या उसको नहीं जानते हैं। बाबा कहती हूँ मनुष्य में इतनी समझ नहीं कि स्वर्ग नरक और नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, कुछ भी जानते नहीं। बाहर का भव का कितना है, तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं। बरोबर हमको बाप पढ़ा आते हैं, ज्ञान सुना है और ज्ञान सुनते हैं, बाबा के मूल्य सुनते हैं, लेकिन ये नशा कम रहता है कि भगवान बाबा ही हमको पढ़ा रहे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों में भी थोड़ी हैं जो समझते हैं, बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए आए हैं, हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। अच्छा, जो बेगर टू प्रिंस बनेंगे हाथ खड़ा करो, हैं बट्टी वाले से हाथ खड़ा करो, बनेंगे तो बेगर टू प्रिंस बने तो क्या हुआ, श्री कृष्ण की राजधानी में पहुंच जाएंगे ना, तो जाना है श्री कृष्ण की राजधानी में। तो इसलिए अपने लिए खुशी से ताली बजाओ कि हमको बेगर टू प्रिंस बनना है और श्री कृष्ण की राजधानी में जाना है। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे, पहले पहले हम जाकर राजकुमार और राजकुमारी बनेंगे। ये पढ़ाई है ना, जैसे इंजीनियर बैरिस्टर आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहते हैं कि हम घर जाकर बनेंगे, ये करेंगे, उनको रहते ना हम ये पढ़ाई पूरी करेंगे, हमारी नौकरी लगेगी, हम ये करेंगे, बहुत सारे प्लान बनाते। तो बाबा कहते हैं तो उनकी बुद्धि में रहता है ना कि हम घर बनाएंगे फिर ये करेंगे। हर एक को अपने कर्तव्य स्मृति में रहता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना। अब दूसरी बात, एक बेगर टू प्रिंस बनना, तो बाबा ने कहा यह भी नशा रहे कि तुम बच्चों को बड़े ऊंच घर में जाकर जन्म लेना। इस पढ़ाई से जितना जास्ती पड़ेगा उतना ऊंच घर में जन्म लेगा, राजा के घर में जन्म ले फिर राजाई चलाने। क्या बताया, एक तो ऊंच पद पाना है, दूसरा राजा के घर में जन्म लेकर के राजाई चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा ये गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता। बाबा कहते जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे योग लगाएंगे उतना गोल्डन स्पून और माउथ होगा। और भक्ति में अलग है, ज्ञान में अलग है। बाबा कहते हैं गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा ये गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, दूसरा अगर दान पुण्य अच्छी रीति करेंगे तो राजा के पास जन्म लेंगे। वह हो गया हद का, ये है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। नोट करो ये बातें बाबा से पूछनी है। साकार बाबा के टाइम होता था कई कई बच्चे ऐसे होते थे उनको कई बातें समझ नहीं आती, उनको होता था कि ज्ञान में चल रहे हैं, और कईयों को होता था हम बाबा के पास जाएंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे, और जैसे ही बाबा के पास पहुंचे उनको भूल जाता था क्या पूछ रहा। बाबा को देखा तो एकदम ऐसे अनुभव होने लगते थे। तो बाबा क्या कहते थे, बच्चे कुछ पूछना है? नहीं बाबा। बाबा कहें बच्चे कुछ पूछना तो पूछो, फिर चुप हो जाएंगे। फिर बाबा कहें बोलो बोलो कुछ कहना है? नहीं बाबा, हमें तो सभी बातों का उत्तर मिल गया। बाबा को देखा उत्तर मिल ही गया, नहीं तो पता नहीं कितनी बातें लिखते थे, कितनी बहस करते थे टीचर से। बाबा के अंदर तो वो शक्ति थी, उस शक्ति से हर बात का उत्तर मिल जाता था। तो बाबा कहते हैं कोई हर बात अच्छी रीति समझो, कुछ भी समझ में आए तो पूछ सकते हो, नोट करो, ये बातें बाबा से पूछनी है, मुख्य है ये बाप की याद की बात। बस पूछने से पहले बाबा को याद करो, सब बातों का आंसर मिल जाएगा। मुख्य है बाप की याद की बात, बाकी कोई संशय आदि है तो बाप ठीक कर दे। बाबा देखते थे जो बच्चे बाबा को बहुत प्यार से दिल से निश्चय से याद करते, उनका कोई भी संशय कोई भी प्रश्न है बाबा आप ही मुरली में दे देते थे। तो बाबा कहते हैं बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। ये भी बच्चे जानते हैं जितने भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जमीन लेते हैं, जो कोई बुरा कर्म करते हैं फिर उनको वैसा ही जमीन मिलता है। कोई कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछ। अज्ञान में भी कई प्रकार के कर्म बंधन है, ज्ञान में भी वैसे है नहीं लेकिन किन्हीं किन्हीं बातों में अपने कर्म बंधन बना लेते हैं। तो बाबा कहते कोई भी कर्म बंधन ऐसा है तो उसको धीरे धीरे चुप्त करते जाओ। तो बाबा कहते कोई कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो, ये है सब पांच का कर्म बंधन। राजा भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कड़ा बंधन बड़ा होता। कई के राजा ऐसे होंगे उनका कड़ा बंधन कुछ न कुछ चलता ही रहता है, कई के राजा ऐसे होते हैं कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई भी बंधन नहीं, वह है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई लेते हैं तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? क्या उन लोगों को बताते हैं ना कि वह योग बल के हैं, कि उनको बहुत क्वेश्चन होते हैं कैसा होगा क्या होगा। बाबा कहते जब योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता है? बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं, महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी, क्योंकि महात्मा तो पहले वह बड़े हुए सारी दुनिया देखी बड़ा गया तब जाकर के महात्मा बने, वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा होता है। विकारों को जानते हैं, छोटे बच्चे तो विकारों को जानते नहीं, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहां तो सब महात्मा है, सच्चे में कहेंगे महात्मा है कहेंगे, जो कहते सब महात्मा है कहेंगे वो हाथ उठाएं कहेंगे महात्मा है ही नहीं, ना वहां महात्मा का नाम ही नहीं है तो वहां तो है ही सारे पवित्र, महात्मा का नाम थोड़ी कहेंगे। तो बाबा कहते हैं वहां तो सब महात्मा है, श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं, वह है सच्चा महात्मा, है महात्मा लेकिन उसको महात्मा नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं राजकुमार बोलते हैं, श्री कृष्ण को राजकुमार कहते हैं ना, वह है सच्चा महात्मा। सच्चे में है ही महान आत्मा, उन जैसे कोई हो न सके। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए किस बात की, हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती, जब किसी को नया मकान बनाना होता बन रहा है तो बार बार वर्णन करते हैं हमारा घर ये तो पुराना हो गया, हम नया मकान बना रहे हैं तो बार बार वर्णन करते हैं, खुशी होती है ना। तो बाबा कहते हैं जब घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना, कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते, आज की दुनिया में क्या बनाते, सच्चे में कैसे होंगे आपके महल भट्टी वाले बताओ, कैसे होंगे आपके महल भट्टी वाले बताओ, हैं बताओ बताओ जोर से बताओ, सोने के होंगे हीरे के होंगे कैसे होंगे, हैं वहां तो उड़ीसा में कितना है कितनी बढ़िया बढ़िया रेत मिलती है, वहां तो क्या करते रेत के बनाते हैं, और अभी बाबा क्या कहते हैं और मार्ब के बनाते रहते और आगे बढ़ गए क्या करते हैं कांच के मकान बनाते हैं, और क्या जल्दी कुछ हो तो जल्दी टूटे, तो इसलिए सच्ची में तो हमारे महल कितने बड़े होंगे। तो बाबा कहते हैं घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती, कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं, जमीन लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वह अपने को ऊंच कुल का समझते हैं। वास्तव में यहाँ पर कोई भी ऊंच कुल का है ही नहीं, ऊंच कुल में शादी के लिए ढूंढते हैं। आगे परिवारों में होता था अपने कुल में ही करना है, अपने जैसा होना चाहिए, कोई कम नहीं होना चाहिए। और आजकल तो क्या हो गया है, आजकल तो जिसको जहां आता है करते हैं, और बुद्धि भी भटकी हुई है, कोई नीच को ऊंच घर में जाते रहते हैं। तो बाबू कहते हैं ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहां कुल आदि की बात ही नहीं, वहां सब ब्राह्मण है। कोई ये नहीं कहेंगे ये कोई चाहिए ये चाहिए, वो ऑटोमेटिकली चलता है। वहां कुल आदि की बात नहीं होती, वहां तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा न कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम सब बाबा के बच्चे आपस में आत्मा रूप में भाई भाई हैं। आत्मा फर्स्ट है, पीछे है शरीर। कर्म करने वाली बोलने वाली कौन है, आत्मा ना। तो बाबा कहते आत्मा फर्स्ट है, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं, तुमको अब देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना, देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है और अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थी है। बाबा हमेशा हंसाते थे, बाबा कहते आते थे ना बच्चे, बाबा पूछते कितने परिवार में कितने बच्चे हैं। कोई कहेगा बाबा हम परिवार में 10 सदस्य, कोई कहेगा हम 5 सदस्य, कोई कहेगा हम 15 ज्वाइंट फैमिली, तो 50 हो जाएंगे। तो बाबा कहते तुम्हारे तो इतने, देखो इस बाबा को देखो कितने बच्चे हैं, अभी कितने बच्चे हैं, लाखों की संख्या में। तो बाबा संभालते हैं, तो बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थी है, कितने ख्यालात चलते होंगे साकार में बाबा के ना। तो बाबा ध्यान ख्यालात करते थे कि ग्रुप आने वाला, बाबा ध्यान देते थे। बाबा कहते थे बच्चों को, दादी को बोलते थे कि अब ये ग्रुप फलानी शहर से आने वाला, दिल्ली से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, इनके रहने का अच्छा प्रबंध हो। बाबा खुद जाते थे, ध्यान से देखते थे, और इनका खाना भी अच्छा होना चाहिए, इनका सारा ऐसा होना चाहिए। उस समय तो बाबा के टाइम पर जगह भी ऐसी थी, थोड़ी जगह थी, सब पट पर सोते थे। अभी जो आए हैं बच्चे वाले सब ठीक है, एकोमोडेशन अच्छी मिली है, हाथ खड़ा करो। एकोमोडेशन वाले ने बहुत मेहनत से आपको सेट किया, पता है संख्या बढ़ा देते हैं, सोचते बाबा का घर चलो। तो बाबा के टाइम पर संख्या बढ़ती थी, सब पट में सो जाते थे। अब तो खटिया नहीं लग सकती ना, पट में तो बाबा नहीं सुलाते। बाबा कहते ये सब मेरे बच्चे कौन है। बाबा के टाइम पर बाबा जब आते थे, बाबा के टाइम बच्चे आते थे ना, तो बाबा कहते थे तुम ये सब मेरे पट राजा पट रानियां है। अभी आप कौन हो, हैं क्या बोलेंगे, पलंग राजा या हैं क्या बोलेंगे। बोलो हम तो बाप के दिल तत्व मशीन है, बोलो जोर से बोलो। बाबा कितनी खातिरी करते हैं ना, बाप के कौन है, दिल तक मशीन है, वो नशा रहना चाहिए। बाबा के टाइम पर तो बाबा के तो बच्चों को इतनी पालना करते, इतनी प्यार करते थे, पता ही नहीं पड़ता था कि हम पट पे सोए हुए। और अभी बाबा जो है बच्चों का इतना ध्यान रखते कि कोई भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे, इनको भी मेहनत करनी पड़ती। श्री बाबा जी तो ऐसे मत सोचो, ब्रह्मा बाबा को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है, ब्रह्मा है सबसे ऊंचा, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे। ब्रह्मा को बहुत ऊंचा मानते हैं ना, श्री बाबा कहते उनको छोड़ करके बाबा किस में आएंगे, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता, कोई नया पैदा नहीं करते, उसी में प्रवेश करते। देखते हो ना इनको कैसे एडॉप्ट करता हूँ, तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो। और क्या जाने, अरे बच्चे जो जाने ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा ने इन में प्रवेश किया। दुनिया वालों को बताओ वो तो समझे ही नहीं, वो तो कहते पता नहीं क्यों सुनाते हैं, क्यों कहते हैं इसमें प्रवेश किया है। तो बाबा कहते हैं इन बातों को तुम्हें जानो और क्या जाने। कहते हैं ये तो जोहरी था, दुनिया वाले भी कहते थे ना शुरू में अभी नहीं, ये तो जोहरी है, कैसे आप कहते हो शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया है। कहते हैं ना ये तो जोहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो, उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणी कैसे पैदा होंगे, एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है, ये बहुत बोहर बातें हैं। ये ब्रह्मा व्यक्त और वह है अव्यक्त। शिव बाबा के टाइम पर ब्रह्मा बाबा सामने है साकार में, तो बाबा ने उस समय बता दिया ये है व्यक्त और सूक्ष्म लोक में ये है अव्यक्त, ये है व्यक्त और वह है अव्यक्त, ये पवित्र गुण फिर अव्यक्त तो हो जाते। ब्रह्मा बाबा ने भी तो पुरुषार्थ किया ना, तो बाबा कहते हैं पवित्र वन अव्यक्त हो जाते हैं। ये कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, पवित्र बन रहा हूँ। बाबा को सब देखते थे, इतनी हाईएस्ट पर्सनैलिटी और बाबा के और सब प्रकार की पावर थी, फिर भी बाबा पुरुषार्थ करते थे। बाबा कहते थे देखो मैं भी पवित्र बन रहा हूँ, मैं भी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जब पुरुषार्थ करके कंप्लीट हो गए तब जाके अव्यक्त बने। तो बाबा कहते मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना, मैं तो कहाँ से आए। बाप खुद समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में तो नहीं कहेंगे, वहाँ प्रजा क्या करेगी, सूक्ष्म वचन में कुछ करना ही नहीं, कोई चीज ही नहीं। तो बाबा कहते प्रजा तो इस दुनिया में होता है ना, वहां प्रजा क्या करेगी, ये इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे ये भी पुरुषार्थ करते, अब ब्रह्मा बाबा का इतना बड़ा पुरुषार्थ था, अकेले इतना पुरुषार्थ किया जो इंडिपेंडेंट पवित्र बन गए, ये इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे ये भी पुरुषार्थ करते हैं वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग है नरक अलग है, अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया, भारत के भी कितने टुकड़े टुकड़े हैं, विश्व के भी कितने टुकड़े टुकड़े हैं। तो बाबा कहते अभी तो देखो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया, 5000 वर्ष पहले की बात है जबकि इनका राज्य था, वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान पारसी आदि सब आते हैं, खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे। बाबा के टाइम पर क्या था, कहाँ पर कोई पारसी आते थे, और बाबा के टाइम पर मुसलमान भी आते थे। पूना के आगे एक नारंग गांव जगह है, वहां पर एक मुस्लिम भाई परिवार आते थे, अभी भी हैं। उन्होंने बहुत मुस्लिम को सेवा किया, बहुत उनकी सेवा किया, वो भी बैठ करके ज्ञान देते हैं। पर बॉम्बे में कई पारसी आते थे, उन्होंने पारसी समाज की सेवा की। तो बाबा कहते जो बाबा के बच्चे हैं, चाहे अभी इस लौकिक में शरीर ये लिया लेकिन है तो आत्मा ना बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम देखते हो यहाँ मुसलमान पारसी आदि सब आते, शुरू शुरू में पाकिस्तान में भी जो कराची में यज्ञ की स्थापना के टाइम पर भी वहाँ एक मुसलमान आता था और बार बार ध्यान में जाता था और आकर के बोलता था कि मैंने अल्लाह का बगीचा देखा, अल्लाह ने मेरे को फूल दिया। तो ऐसे भी बहुत आते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं। तो अभी भी भारत के विभिन्न स्थानों पर कई इस प्रकार से आते हैं, बहुत अच्छे से अनुभव करते और कराते हैं। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान पारसी आदि सब आते हैं, खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना, समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते, कहाँ पर सिख चलाते हैं, कहाँ कोई चलाते ही रहते ना गीता पाठशाला सेंटर। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे, सेपरेट लगता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं, बोधी भी आएंगे। बाबा ने पहले ही बता दिया, विदेश में जाते ना कई स्थानों पर बोधी आते हैं, जैसे बर्मा में है जाओ वहां पर है, नहीं यहाँ थाईलैंड की तरफ जाओ, खास करके श्रीलंका की तरफ जाओ, तो वहां तो कई बोधी है आकर के क्लास भी करते हैं और उनको भी सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बोधी भी आएंगे, तुम बच्ची जानते हो जब समय नजदीक आएगा तो चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा, एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाए। अभी तो वो हो गया ना, थोड़ा सा समझाओ, सब सुनने के लिए तैयार है। तो बाबा कहते हैं एक भाषण तुम करेंगे तुम्हारे पास ढेर आ जाएंगे, अब सबको स्मृति आएगी हमारा सच्चा धर्म ये है, जो हमारे धर्म के होंगे वे सब आएंगे तो सही ना, लाखों वर्ष की बात नहीं है, बाप बैठ समझाते हैं, तुम कल देवता थे अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले, कल देवता थे अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम सच्चे सच्चे पांडव हो, पांडव अर्थात पंडे है ना, सब पंडे बाबा का ज्ञान देते हैं, बाबा के घर में ले आते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम सच्चे सच्चे पांडव हो, पांडव अर्थात पंडे वो है जिस्मानी पंडे, तुम ब्राह्मण हो कौन रूहानी पंडे, तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो, ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए, हम बाप के पास जाते हैं जिससे बेहद का वर्षा मिलता, कौन सा नशा कि हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है, वह हमारा बाप भी है टीचर भी है, इसमें पढ़ने में कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। बाबा के टाइम पर जब मुरली चलती थी बाबा के लिए टेबल कुर्सी नहीं थी, बाबा भी संगली पर बैठते थे, मम्मा भी संगली पर, और सब के सब नीचे बैठते थे, उस समय तो कुछ भी नहीं था, हॉल में सब पट में बैठते थे, बाद में फिर दीदी मनमोहिनी का थोड़ा सा टांग में तकलीफ हुई तो एक कुर्सी कॉर्नर में रखी जाती थी और बाकी सब महारथी जितने भी थे सब पट में बैठते थे। तो बाबा कहती तो पढ़ाई ऐसी है, बाबा से मिलने की पढ़ाई है, इसमें टेबल कुर्सी की तो जरूरत नहीं है, लेकिन अभी बाबा जानते हैं मेरे बच्चे लाडले हैं, बादशाह बनने वाले हैं, तो वहां तो जो मिलेगा सो मिलेगा, उससे पहले बाबा यहाँ अनुभव करा देते हैं, यहाँ तो सोफा मिलता है आराम से बैठते हैं, और सोफे पर बैठे बैठे क्या होता है, कभी कभी कहाँ चले जाते, किसके पास पहुंच जाते, माया भी प्यार करती है न तो कहती आ जाओ मेरे पास, सोफे पे बैठे हुए धीरे से पीछे की ओर मुड़ जाते, इसलिए बाबा के लिए ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार में, ये तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए, वास्तव में ये समझने की बात है, बाबा के बच्चे चार्ट लिखते हैं, मुरली की पॉइंट लिखते हैं, बाबा कहते क्यों लिखते, केवल अपने लिए लिखते ना, अपने पुरुषार्थ के लिए, वास्तव में समझने की बात है, शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते हैं, बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं, बाबा को पत्र लिखते थे ना बच्चे, तो बाबा बच्चों के पत्रों का जवाब देते थे, बाबा का हमेशा लाल पेंसिल सिंधी लिपि और बड़े बड़े अक्षर होते थे, और बाबा हर पत्र का जवाब अपने हाथ से देते थे, और उन बड़े लाल अक्षरों के नीचे कभी ईश्वर दादी कभी संदेशी दादी, नीचे हिंदी में जो सिंधी वाले होते थे उनको सिंधी में लिख करके भेजते थे, तो बाबा के लाल अक्षर होते थे, केवल वो लाल अक्षर इतने बड़े बड़े होते थे, और बाबा की जो हैंड राइटिंग थी जिसको कहते गोर जाने गोथरी जाने, वो ईश्वर दादी ही समझ सकते थे, वही सारा लिख करके भेजती थी। हमें याद है कमलेश दीदी हमारी बाबा को जब ज्ञान में, बाबा को बहुत पत्र लिखते थे, बाबा इनके पत्रों को बहुत प्यार से जवाब देते थे, बहुत अच्छे अच्छे पत्र थे। अच्छा जिन्होंने बाबा के पत्र को देखा, बात खड़ा करो, बाबा की पत्र जो लाल पेंसिल से लिखे हुए देखे वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जिन्होंने नहीं देखे वो हाथ खड़ा करो। अरे आधे से ज्यादा क्लास है। अच्छा, बाबा के पत्रों का एक सैंपल रखा हुआ है हिस्ट्री हॉल में, पीछे हिस्ट्री हॉल के अंदर ही पीछे की दीवार में एक छोटा सा शो केस है। उस शो केस में बाबा की दो चार छोटी छोटी चीजें, तो बहुत ही सारी चीजें तो नहीं लिख रखी है, दो चार छोटी छोटी चीजें हैं, उसमें बाबा का पत्र भी वहां पर रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षर हैं, इतने बड़े बड़े जैसे उर्दू स्टाइल में लिखा हुआ है। तो वो पत्र है वहां पर, आप जाकर के जब हिस्ट्री हॉल में जाएंगे ना तो वहां जाकर के देख सकते, और उसके नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, वो हिंदी में ब्लू पेंसिल लिखा हुआ है और बाबा का पत्र जो है लाल पेंसिल से लिखा हुआ है। तो बाबा कहती है शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते हैं, बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। जब पत्र आता था ना बड़े खुश होते थे, हमें याद आता है जब बाबा का पत्र आता था ना तो मनोहर दादी बैठती, सब भाई बहन इकट्ठे बैठ जाते थे, बस बाबा का पत्र दिखाते थे, वो पढ़ करके सुनते थे, फिर सब उस पत्र को देखते थे, पत्र को देखा बस सब भरपूर हो गए। तो बाबा कहते बच्चे समझते हैं कि श्री बाबा के लाल अक्षर आए हैं, बाप लिखती है रूहानी बच्चे, कभी बाबा लिखेंगे सिक्की लदे नूर रतन, बाबा कभी लिखते थे रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा वह बहुत ऊंचते ऊंच है, उनके मत पर चलने हैं, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, वह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, उस भूत के वश मत हो। बाबा कहते हैं काम जो है इतना बड़ा भूत है, इस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो, बुलाते भी हैं हे पति पावन, अभी तुम बच्चों को बहुत बड़ी ताकत मिलती। बाबा के बने तो कितनी ताकत मिलती, अभी तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा न सके, ऐसा राज्य मिलता है जो कोई दुश्मन भी नहीं कोई जीत भी नहीं पा सके। तुम कितने सुखी बनते हो, तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए, हमको बादशाही मिलती है, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं, भगवानों वाच्य है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ, भगवान किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं है, आत्मा पुकारती है ओ बाबा, किसी को पुकारते तो मालूम है तब तो पुकारते ना, तो बाबा कहते आत्मा पुकारती ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना किसको पुकार रही है, आत्मा पुकारती ओ बाबा तो मालूम होना चाहिए ना वे कब और कैसे आएंगे, मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत विभीषण आदि को तो जानेंगे ना, मनुष्य ही पार्ट बजाते हैं तो ड्रामा के आदि मध्य अंत की ड्यूरेशन क्या वही जानेंगे ना, मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे, जानने से तुम देवता बन जाते हो, ज्ञान है ही सदगति के लिए, इस समय है कलयुग का अंत सब दुर्गति में है, सत्युग में होती है सदगति, अभी तुम जानते हो क्या जानते हो, बाबा आया हुआ है सर्व का सदगति करने के लिए, सबको जगाने आए हैं, कोई कब्र थोड़ी है जैसे दिखाते ना शास्त्रों में दिखाते हैं, या दिखाते कि कब्र में सब कब्र दाखिल हो जाते फिर अल्लाह आता आकर के कब्र से उठाते, बाबा कहते बाबा तो अज्ञान से जगाते हैं, तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने, सबको जगाने आए हैं, कोई कब्र थोड़ी है परंतु घोर अंधियारे में सो पड़े हैं, उनको जगाने आए हैं, जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनको अंदर में बहुत खुशी है, पहले अज्ञानता में थे बाबा के बने जग गए तो उनको बहुत खुशी रहती है, जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं, उनके अंदर बहुत खुशी होती है। हमारे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं है। कोई फिक्र बाबा के बच्चों को? बाबा के बच्चे बने, दुनिया के हालत देखो, कितनी चिंताएं हैं, क्या क्या करते रहते, क्या होगा पता नहीं। बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा तो सब कुछ बैठे बैठे कर देता है। तो बाबा कहते हैं कोई फिक्र नहीं, बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, होली का नाम है। साकार में बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, कोई रोता था ना, प्रेम के आंसू आ, वो बात अलग थी। वैसे कोई दुख के कारण रोते थे तो बाबा क्या कहते थे, अरे तुम विधवा बन गए हो क्या, तुम्हारा क्या हुआ, क्यों रो रहे। बाबा को अच्छा नहीं लगता था। बाबा बहुत युक्ति से प्रॉमिस कराते थे। एक बार बाबा ने क्या किया, क्लास में टोली बांटनी होती थी तो कभी बाबा खुद बांटते थे, कभी बाबा बच्चों को बुलाते थे, कहते थे बच्चे तुम टोली बांटो। तो बाबा ने कहा एक बार किसी को कौन टोली बांटेगा, तो एक दो ने हाथ खड़ा कर दिया। बाबा ने कंडीशन रखी, कंडीशन ये थी पहले प्रॉमिस करो कभी भी रोएंगे नहीं, वो आकर के बाबा के सामने आए तो टोली बांटे। फिर हिम्मत रखते थे बच्चे, बाबा के इस बात को स्वीकार करते थे, फिर बाबा उनको देते थे जहां सबको टोली बांटो। तो बाबा कहते हैं रोने का नाम नहीं, ये है ही रोने की दुनिया, वह है हर्षित रहने की दुनिया। उनके चित्र देखो कितने शोभनीय और हसमुख बनाते हैं, वह फीचर तो यहाँ निकाल न सक। सतयुगी दुनिया के, सतयुगी देवी देवताओं के फीचर कितने भी सुंदर बना लो, लेकिन वहाँ एकदम एक्यूरेट हूँ वो तो कर नहीं सकते। वहाँ के फीचर तो यहाँ निकाल न सके। बुद्धि से समझते हैं इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं, तो मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में हम अमरपुरी के प्रिंस बनेंगे, इस मृत्यु लोक को और भंगोर को आग लगनी है, सिविल वार में भी एक दो को कैसे मारते, क्या हालत कर लेते हैं, ऐसे क्रोध आता तो क्या क्या करते हैं, किसको हम मारते ये भी पता नहीं पड़ता, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी, उनको ये भी पता नहीं पड़ता अपनों को ही मार रहे हैं। तो बाबा कहते किसको मारते हैं ये भी पता नहीं पड़ता, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है, तुम्हारी विजय बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुशारत करते हो अपने घर में जाने के लिए, भक्ति का कितना फैलाव है, जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव। बीज है थोड़ा छोटा और भक्ति मतलब पत्ते कितने होते गिनती भी नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे ही भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है, बीज है बाबा, और इस झाड़ की स्थापना पालना और विनाश कैसे होता है ये भी तुम जानते हो। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है, दुनिया में एक भी नहीं जानते, क्योंकि ये झाड़ इतना सुंदर है, इतना प्यारा है। आपने ये कहानी भी सुनी हुई है, जब दादी प्रकाशमणि रतमन दादी, दादा आनंद किशोर जब जापान में गए थे तो ये झाड़ का चित्र लेकर गए थे। वहां जाकर के लोगों को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, और वहां के लोगों ने हजारों की संख्या में झाड़ के चित्र फ्री में छपवा करके दिए। बोला ऐसा चीज तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो बाबा कहते देखो वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है, दुनिया में एक भी नहीं जानता। अब तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बाप को याद करने की, तो विकर्म विनाश हो। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भाव सब देह के धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य भी इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं, वह है ही भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग, ये राजधानी स्थापन हो रही है। फिक्र की कोई बात है, दुनिया में कोई एक राज्य लेना, स्टेट का भी लेना, तो कितना लड़ाई झगड़ा चिंता चलती, तो बाबा जी के इसमें तो कोई फिक्र की बात नहीं, ये राजधानी स्थापन हो रही है इसमें फिक्र की तो कोई बात ही नहीं, जिसने भी थोड़ा सा ज्ञान सुना प्रजा में तो आ ही जाए, लेकिन पद में अंतर हो जाएगा, प्रजा में तो आ ही जाएंगे। ये बुद्धि में समझ है ना, हम पुरुष बनने वाले हैं, नई दुनिया में स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी रहती, इम्तिहान पास करेंगे खुशी भी रहती है, खुशी के साथ साथ क्या क्या सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट पास होते हैं तो कितनी खुशी रहती है, तुमको तो हजार बार क्या होना चाहिए, उनको तो थोड़ी सी पढ़ाई के नंबर थोड़े भी ज्यादा मिल गए तो देखो नाचते। तो बाबा कहते तुमको तो हजार बार जास्ती अति इंद्रिय सुख होना चाहिए, उन स्वयं की भेंट में बच्चों को क्या होना चाहिए, हजार बार जास्ती अति इंद्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं, कोई भी बात में कभी रूठना नहीं, छोटी छोटी बातें आ जाती ना तो रूठ जाते हैं, कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणों से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं, कहाँ कहाँ ऐसा भी होता है, आप उसमें नहीं बनती है ना तो क्लास करना छोड़ देंगे, संख्या की बहन से बात करना छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। तो बाबा कहते बाप से ब्राह्मणों से नहीं बनती है तो बाप से क्यों रूठते, बाबा ने थोड़ी कुछ कहा, यहाँ भी ऐसे होगा, यहाँ नहीं ऐसे नॉर्मली किसके आपस में ही बनेंगे तो दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहे, अरे दूसरे को क्यों बोल रहे, जिनकी नहीं बनती उनकी आपसी बात है। तो बाबा भी ये कहते हैं कि ब्राह्मणों की आपस में नहीं बनती तो बाप से नहीं रूठना चाहिए, ब्राह्मण से नहीं बनती तो बाप से रूठते, अरे तुम बाप से बुद्धि योग तो लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो, बाबा बस हम आपको याद करते करते हम अपने घर आ जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी यादें बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सा, पहला है किसी भी बात का फिक्र नहीं करना, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। दूसरा सदा हर्षित रहना है, स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाए। दूसरी पॉइंट अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। आज का वरदान मनुष्य शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव, मनुष्य शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव, मनुष्य शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक, मनुष्य शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में स्मरण करने के अभ्यासी होते हैं ऐसी ज्ञान में स्मृति की भी शक्ति, बाबा की याद मनन से शक्ति मिलती है, इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपनी एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी, शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार हो नहीं सकता, परवश भी नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वाणी द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन है मनन शक्ति। स्लोगन, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव जिनको सदा संतुष्ट रखता, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव जिनको सदा संतुष्ट रखता है। आगे इशारे, अलौकिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसी पुरुषार्थ से थको नहीं, दिन शिकस्त भी नहीं बनो, निश्चय बुद्धि हो, मेरे पन के संबंध से न्यारी हो, शांति और शक्ति का संयोग आत्माओं को देते रहो। आज का मम्मा का जो वरदान हमें मिल रहे हैं, तो आज 6 तारीख है, प्यारी मम्मा ने हमें क्या नहीं दिया है तो ये भी हम सुनेंगे। मम्मा के अंदर तो बहुत से गुण भी थे और मम्मा का ही महीना चल रहा है। अच्छा, आज 6 तारीख है, क्षमा भाव के गुण से सदा समाने की शक्ति से संपन्न। क्षमा भाव के गुण से सदा समाने की शक्ति से संपन्न मम्मा हर बच्चे की कमी कमजोरी को जानते हुए भी सदा सबके प्रति क्षमा भाव रखा। मम्मा को पता होता था किसमें क्या है, लेकिन मम्मा हमेशा उनके लिए क्षमा भाव रखती थी। मम्मा हर बच्चे की कमी कमजोरी को जानते हुए भी सदा सबके प्रति क्षमा भाव रखा। किसी को भी कमियों का कभी किसी के सामने वर्णन नहीं किया, सब कुछ सुना और समाया। मम्मा में सागर समान समाने की शक्ति थी। हम सभी भी क्षमा भाव के गुण को धारण कर हर बात को समा ले, तभी दिल से अपना मानेंगे और सम्मान देंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी बच्ची के सभी भाई बहने बैठे रहेंगे और बच्ची की वो माता या भाई जो नीचे डाइनिंग में या किचन में चूल्हे बनाने के लिए गए हैं, उनसे हम बता रहे हैं कि वो अभी ओम शांति भाव में पहुंचे, क्योंकि क्लास के बाद उनको सौगात मिलनी है। कोई भी मिस नहीं करेंगे, कोई एक बहन या भाई को भेज दो, सोचना नहीं, किसी एक को भेज दो नीचे। जो भी बच्ची के भाई बहने नीचे बैठे हैं या जिन भाई बहनों को खाना खिला रहे या डाइनिंग में कुछ भी सेवा है, वो सब 10-15 मिनट के लिए यहाँ पर आ जाए, क्योंकि बाबा के घर में उनको सौगात मिलेगी। बच्ची वाले सब बैठे रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सबको बाबा के घर से सौगात मिलेगी। अच्छा, अभी हम सभी बाबा की याद में बैठते, उसके बाद बच्ची के भाई बहने बैठे रहेंगे। राधा बहन, आप भी मंच पर आ जाना। टोली किचन में होंगे तो उनको बुला दो।